श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 9। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य मतलब कोई मिलावट नहीं हो उसका पुण्य कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलना और सुनना ये भी पुण्य श्रवण कीर्तन कहा जाता है, यानी कि ये जो पुण्य है इसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध पुण्य मिलता है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आदि सुगंध है वह कृष्ण है। जैसे कि आप लोग को स्मरण हो, कभी कभी जब बारिश में मिट्टी की सुगंध आती है तो कितनी आकर्षक लगती है, उसको हम किसी केमिकल से नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो गंध है वो यहाँ पे वो भगवान का सूचक है, भगवान की विशिष्ट शक्ति है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी भगवान ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे तो इस जगत में कुछ विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताएंगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि और उसमें बताएंगे भगवान कि जो एक किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में एक विशिष्टता है, स्पेशल गुण है जिसकी वजह से वस्तु आकर्षक लगती है, वो भगवान की वजह, वो भगवान का तेज है, तेज का अंश है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद या रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है ना भोजन पक सकता है। ये अग्नि कृष्ण है, अग्नि का तेज भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच के कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। एक ये है कि हम लोग भगवान की शक्तियों के बिना अपना काम नहीं चला सकते। मान लीजिए भगवान बोले कि भाई तुम लोग बहुत दिन धरती पर रह लिए मेरे द्वारा बनाई हुई और तुम अब अपनी धरती का निर्माण करो, तो हम लोग तुरंत क्षमा मांगेंगे भगवान से, भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि हम लोग पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि क्योंकि ये शक्तियाँ भगवान से आई हैं, ठीक है अचेतन है, लेकिन जैसे ही इनका उपयोग भगवान के लिए किया जाता है, ये उपयोग छोड़ दीजिए केवल इच्छा की जाती है कि इसका उपयोग मैं भगवान के लिए करूं, तो वो स्पिरिचुअल हो जाती हैं। और स्पिरिचुअल कैसे हो जाती हैं कि इनका उपयोग करने से इस वस्तु में, इस जगत में हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसका कर्म बन जाता है, लेकिन उन वस्तुओं को उपयोग कर भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो व्यक्ति उन कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वही वस्तु, वही उसका हम उपयोग करते हैं अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए तो उसका हमें कर्म लगता है, लेकिन अगर उसी वस्तु का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो वही वस्तु हमें कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। वस्तु कर देती है मतलब उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ना तो इस जगत को भोगने के बारे में सोचता है, निभक्त, और ना इस जगत को त्यागने के बारे में सोचता है। जैसे कोई एक भिखारी किसी महल के सामने खड़ा हो और वो बोले कि भाई मैंने तो महल को त्याग दिया है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, महल तो उसका था ही नहीं। हम केवल हमारा ये स्वामित्व का भाव कि इस जगत की वस्तुएं मेरी हैं इसको त्यागना है और भगवान के दासत्व के भाव को बढ़ाना है, जिसके द्वारा हमको ये सचेतन, हम सचेत अवस्था में रहें कि भगवान की वस्तुएं ये है, मेरा शक्ति, मेरा कार्य करने की शक्ति, मेरी आयु, सब कुछ भगवान का है, तो इनको भगवान की सेवा में नियोजित करना है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भक्त जो हैं वो ना तो भगवान से आसक्त, क्षमा कीजिएगा, ना तो वो जगत से आसक्त होते हैं और ना वो जगत से निरासक्त होते हैं। उनकी आसक्ति भगवान और भगवान की सेवा में होती है और जगत की वस्तुओं का उपयोग वो भगवान की सेवा में करते हैं। जैसे कि ये स्मार्टफोन है जिसके द्वारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका उपयोग भगवान की सेवा में करने से स्पिरिचुअल हो जाता है, और जैसे ही इसका उपयोग मैं भगवान अपनी सेवा के लिए करना चाहूँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहूँ, भोग के लिए करना चाहूँ, तो तुरंत ही भौतिक हो जाता है और इसका मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि भगवान के प्रति की गई सेवा ये असीमित लाभ देती है। स्पेशली जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो जो फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा जो भगवान के बारे में समझा रहा है, वही फायदा उसको मिलेगा जो उसमें सहयोग देता है। जैसे किसी भक्त ने इस फोन को स्पॉन्सर किया है, तो मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, जितनी भगवान ने मेरे को बुद्धि दी है, तो मुझे तो लाभ प्राप्त होगा ही असीमित, लेकिन जिस भक्त ने स्पॉन्सर किया उसको भी लाभ प्राप्त होगा, और जो लोग सुनेंगे उनको भी असीमित लाभ प्राप्त होगा, और फिर अगर उसको और लोगों को बताएंगे तो और लाभ प्राप्त होगा। केवल मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस लेक्चर को सुन करके आप बस संतुष्ट हो जाएं, आपको ये भगवद्गीता का ज्ञान सीखना चाहिए, क्योंकि परम सत्य के बारे में दूसरों को बताने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अन्यथा लोग भगवान के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। तो इसलिए हम लोग को भगवद्गीता को बड़ी गंभीरता से सीखना चाहिए और फिर दूसरों को बताने का प्रयास करना चाहिए, इससे हमारा भी परम कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा।